ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद अध्याय 2 श्लोक संख्या 7। कात्वं चिकीर्षसि च किं मुनिवर्य शैले मायासि कापि भगवत् परदेवताया विजये बिभर्षि धनुषि सुहृद् आत्मनोरिति किं वा मृगं मृगयसे विपिने प्रमत्तान्। शब्दश अर्थ का, कौन, त्वं तुम हो, चिकीर्षसि क्या करना चाहते हो, च भी, किम क्या, मुनिवर्य हे मुनिश्रेष्ठ, शैले इस पर्वत पर, माया माया, असि हो, कापी कुछ, भगवत भगवान, पर देवताया दिव्य ईश्वर का, विजय बिना डोरी के, बिभर्षि धारण किए हुए, धनुषि दो धनुष, श्रुत मित्र का, आत्मन अपने, अर्थे हेतु, किंवा अथवा, मृगान जंगली पशु, मृगयसे आखेट करने का प्रयत्न कर रहे हो, विपिने इस वन में, परमत्तान धन से मत वालों का। अनुवाद तथा तात्पर्य एसी भक्ति वेदान स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद, राजकुमार ने भूल से अप्सरा को संबोधित किया, हे मुनिवर्य तुम कौन हो, इस पर्वत पर क्यों आए हो और क्या करना चाहते हो, क्या तुम भगवान की कोई माया हो, तुम बिना डोरी वाले इन दो धनुषों को क्यों धारण किए हो, क्या इनसे कोई तुम्हारा प्रयोजन है या अपने मित्र के लिए इन्हें धारण किए हुए हो, संभवतः तुम इन्हें इस वन के मतवाले पागल पशुओं को मारने के लिए धारण किए हो। तात्पर्य, वन में कठिन तपस्या करते हुए अग्निद्र ब्रह्मा द्वारा भेजी गई पूर्वचिति की भंगिमाओं से मोहित हो गए, जैसे कि भगवद्गीता में कहा गया है, कामस्तस्य श्रुत ज्ञाना, कामी पुरुष अपनी बुद्धि गंवा बैठता है, अतः बुद्धि खोने के पश्चात अग्निद्र स्त्री तथा पुरुष में अंतर नहीं कर पाए, उन्होंने उसे मुनि पुत्र समझा, इसलिए उसे मुनिवर्य कह कर संबोधित किया, किंतु उसकी सुंदरता के कारण उन्हें विश्वास नहीं हो पाया कि वह किशोर है, अतः उन्होंने उसके अंगों को ध्यान से देखना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम उन्हें उसकी दो भौहें दिखाई पड़ी, जिनको देखकर उन्हें भ्रम हुआ कि कहीं वो भगवान की माया तो नहीं है। इसके लिए भगवत पर देवताया शब्दों का प्रयोग हुआ है। देवता अथवा देवतागण इस भौतिक जगत से संबंधित है, किंतु भगवान इस भौतिक लोक से परे रहते हैं, अतः पर देवता कहलाते हैं। यह भौतिक जगत माया के द्वारा सृजित है, किंतु पर देवता भगवान के आदेश के अनुसार इसका सृजन होता है, जैसे भगवद्गीता में पुष्टि की गई है, माया देक्षेन प्रकृति सूयते स चराचरम। इस संसार की सृष्टि का परम नियंता माया नहीं है, माया श्री कृष्ण की ओर से कर्म करती है। पूर्वचित्ति की भौंहें इतने सुंदर थी कि अग्निद्र ने उनकी तुलना डोरी विहीन धनुषों से की, इसीलिए उन्होंने पूछा कि वे उसके अपने प्रयोजन के लिए थे अथवा किसी अन्य के लिए थे। उसकी भौंहें वन के पशुओं को मारने के लिए प्रयुक्त धनुषों जैसी थी, यह संसार वन के तुल्य है और उसके निवासी वन के पशुओं यथा हिरण तथा बाघ जैसे है जिनका शिकार किया जाता है। सुंदर स्त्री की भौहें ही उन्हें मारने वाली है। स्त्री की सुंदरता से मोहित होकर संसार के सभी मनुष्य बिना डोरी वाले धनुष से मार दिए जाते हैं, किंतु कोई ये नहीं देख पाता कि माया उन्हें किस प्रकार मारती है, पर यथार्थ में वे मारे जाते हैं। भूतवा भूतवा प्रलयति, अपनी तपस्या से अग्निद्र जान सके कि भगवान के आदेश से माया किस प्रकार कार्य करती है। प्रमत्तान शब्द भी महत्वपूर्ण है। प्रमत्त का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों को अपने वश में नहीं कर पाता। समस्त संसार ऐसे ही प्रमत्त या विमूढ़ व्यक्तियों द्वारा शोषित हो रहा है। अतः प्रहलाद महाराज ने कहा है, सोचेत तो विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय भरम उद्वहत विमोडान। वे क्षणिक सुख के लिए विषयों से सड़ते रहते हैं और इंद्रिय भोग के लिए ही दिन रात श्रम करते हैं, हुए जीवन नष्ट कर रहे हैं। उन्हें ईश्वर से किसी प्रकार का लगाव नहीं है। मैं उन्हें के लिए सोच मग्न हूं और उन्हें माया के चंगुल से मुक्त करने की विभिन्न युक्तियां सोच रहा हूं। शास्त्रों में इंद्र तुष्टि के लिए कर्म करने वाले कर्मियों को प्रमत्त विमुख तथा विमूढ़ कहा गया है। ये माया के द्वारा मारे जाते हैं, किंतु जो अप्रमत्त अथवा धीर है वे भली भांति जानते रहते हैं कि मनुष्य का मुख्य कर्तव्य परम पुरुष की सेवा करना है। जो माया के उद्देश्य धनुष तथा बाण से प्रमत्त है उन्हें वो मारने के लिए सदा तत्पर रहती है। अग्निद्र ने पूर्वचिति से इस सब के बारे में पूछा। ओम ज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानांजन शलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुर्वे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपां सागरजातां सगन रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगन ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रश्नाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वांछाकल्पतरुभ्यस्य कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी लोगों का जो उत्साह से भागवतम सुनने के लिए आए हैं, और मैं सभी का आशीर्वाद चाहता हूँ ताकि मैं कुछ बोलूँ भगवान के गुण कीर्तन में मेरे शुद्धिकरण के लिए। तो प्लीज ब्लेस मी। सो ये जो सुबह का प्रोग्राम है और स्पेशली ये डेली भागवतम क्लास है, ये बहुत ही जरूरी है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, यस्य वै श्रूयमानानां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पत्ते पुंसा शोक मोह भय अपहा। सिर्फ सिंसियरली रोज भागवत श्रवण से, यस्य वै श्रूयमानानां, यस सुनने से, अधिकृत भक्तों से, कृष्णे परम पुरुषे, भगवान कृष्ण के बारे में अधिकृत भक्तों से सुनने से क्या होता है? भक्तिर उत्पत्ते पुंसाम, हृदय में भगवान के प्रति जो है आकर्षण, भगवान के प्रति जो भक्ति, भगवान के प्रति जो प्रेम है उत्पत्ते। और प्रेम उत्पन्न होने का क्या रिजल्ट होता है? शोक मोह भय अपह। आजकल हम देखते हैं सब लोग बहुत हमेशा अलग अलग चिंता में रहते हैं। कभी कभी वो सोचते, अरे मैंने पूर्व में ऐसा क्यों किया, उनको शोक रहता है, मैंने एक जीवन में ये गलती किया, ये गड़बड़ किया, ये प्रॉब्लम हुआ। सो शोक रहता है बहुत। सिर्फ भागवत कथा सुनने से रोज क्या होगा, वो शोक से मुक्ति हो सकती है। मोह, हम देखते ये दुनिया बहुत बिल्डरिंग है और हम मोह में फंस जाते, लगता है ये करेंगे खुश हो जाएंगे, वो करते और ज्यादा दुख आ जाता है ना, तो मोह में हम फंस जाते हैं। तो रोज भागवत कथा सुनेंगे तो क्या होगा, यह मोह से भी हम मुक्त हो सकते हैं। और आजकल का जो समय चल रहा है, लोग तो बहुत है भयभीत है ना, तो भागवतम में इसका इलाज दिया है, रूट सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन दिया है? ये श्रीमद् भागवतम श्रवण करने से ही भगवान का हृदय में अस्तित्व हमको पता चलेगा, उनके प्रति आकर्षण निर्माण होगा, भक्ति प्रेम उत्पन्न होगा। और जैसे भगवान का प्रेम हृदय में निर्माण होता है तो क्या हो जाता है, भय अपह, सब भय से हम मुक्त हो सकते हैं, अभय बन सकते हैं। सो प्रभुपद अभय चरणारविंद स्वामी थे, अभय उमर उनका 70 उम्र में भी वो विदेश में गए, एक पैसा है ना, कुछ मटेरियल उनके साथ एसेट्स नहीं थे, हेल्थ भी ठीक नहीं था, कुछ कॉन्टेक्ट नहीं, फिर भी वो निर्भयता से चले गए भगवान के वाणी में प्रचार करने के बाद, क्योंकि उनको पता था यही सबको शोक मोह भय से मुक्त कर सकता है। मैं पढ़ रहा था कि प्रभुपद ने जब एडवर्टाइजमेंट किया था तो एडवर्टाइजमेंट में लिखा था कि ये श्रीमद् भागवतम विदेश जा रहा है और मैं सिर्फ एक तुच्छ दास उसको लेके जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं विदेश जा रहा हूं और मेरे साथ भागवतम आ रहा है, ऐसा नहीं बोले। वो क्या बोले, श्रीमद् भागवतम विदेश में जा रहे हैं और मैं एक इनसिग्निफिकेंट उनका तुच्छ दास उसके साथ जा रहा हूं, क्योंकि भागवतम जो है कृष्ण है, और ये भागवतम का जो वाणी है अगर हमारे हृदय में स्पर्श हो जाएगा तो शोक मोह भय से हम मुक्त हो सकते हैं। और ये क्या है, बिना मूल्य उपाय है, इसके लिए तो आपको कुछ पैसा देना नहीं है। हमको सिर्फ क्या है, कान देना है, हमारा समय देना है, और मनपूर्वक हृदय से कान से हम श्रवण करेंगे तो तुरंत हमको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा, इंस्टेंट रिजल्ट, शोक मोह भय अपहा। कितने लोगों को शोक मोह भय से मुक्त होना है, तो ध्यान पूर्वक कुछ समय के लिए श्रवण करने का प्रयास कीजिए। तो आज हम चर्चा कर रहे ये पंचम स्कंद अध्याय 2 महाराज अग्निद्रह का चरित्र। तो और इसमें हम देखते हैं ये अध्याय में बहुत सुंदर तरीके से सुंदर स्त्री का वर्णन किया है। और जैसे हम जाएंगे आगे आगे और डिटेल में वर्णन आएगा। आज तो उनके आईब्रोज बहुओं के बारे में वर्णन किया है, कैसे ये दो है बांध के समान है विदाउट स्ट्रिंग, जो किसी को भी खत्म कर सकते हैं, मार डाल सकते हैं। ऐसे बांध है जो बड़े बड़े दिग्गज कॉन्करर्स दुनिया के सार्वभौम जो है लोग है उनको भी परास्त कर सकते हैं। ऐसे ये दो बांध है। और अग्निद्र उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं ये भागवतम जो है क्या है, अमल पुराण है। और ऐसे भागवतम में इतना डिटेल में एक स्त्री का वर्णन करने की क्या जरूरत है, जरूरत है क्या? बोल सकते एक स्त्री आया और फिर पूर्व चित्ति और अग्निद्र का शादी हो गया, ठीक है आगे बढ़ो। बट इधर इधर कितना डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया है, और वो डिस्क्रिप्शन कौन कर रहा है? सुखदेव गोस्वामी जो कि परमहंस है। अभी परमहंस को इसके बारे में क्या लेना देना है? और वो तो ऐसे थे कि वो तो कपड़े भी पहनते नहीं थे। और किसको बोल रहे हैं? एक परीक्षित जो कुछ दिनों में मरने वाले हैं, मृत्यु आने। अभी उनको ये चीज बात करने की जरूरत है क्या? और हम देख रहे यही बात, ऐसा नहीं कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को बोला और वो मैटर उधर सेटल हो गया। बाद में यही बात शुद्ध गोस्वामी नैमिषारण्य के 80,000 साधु संतों के बीच में बोल रहे हैं, वो भी उत्साह से। अभी ये बात हो गई, ठीक है सुखदेव गोस्वामी बोल दिया, ठीक है अभी ये शुद्ध गोस्वामी को क्यों बोलने का जरूरत था? और वो भी 80,000 साधु संतों के बीच में, वो थोड़ा कट करके आगे जा सकते थे ना, है ना। और हम देखते वो मैटर उधर भी सेटल नहीं हुआ। हम देखते सब आचार्यगण और स्पेशली हम प्रभुपाद देखते, प्रभुपाद ने कितने बड़े बड़े तात्पर्य दिए हैं। जो कुछ डिस्क्रिप्शन कम है तो उसको और ज्यादा डिटेल में डिस्क्रिप्शन परपोर्ट में दिया है, है ना। हम देखते कुछ कुछ चीजें अनुवाद में नहीं, लेकिन उसका ज्यादा डिटेल तात्पर्य में मिल जाता है, तो उसका क्या और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो सकता है। तभी ये इसका क्या जरूरत है, हमारे मन में विचार आ सकता है, अरे ये लोग तो परामर्श लोग है, ये तो अमल पुराण है, ये क्या चर्चा चल रहा है ना। सो ये क्यों चर्चा चल रहा है? हमको तो बहुत उससे डिस्टर्बेंस हो रहा है ना। कभी कभी ऐसे हम बातें सुनते हैं पढ़ते हैं तो मन में कभी डिस्टर्बेंस होता है कि नहीं होता है? कितने लोगों को होता है? सो ये प्रश्न ये नहीं है कि ये बात क्यों भागवतम में है, प्रश्न ये पूछना चाहिए कि ये भागवतम सुन के मुझे डिस्टर्बेंस क्यों हो रहा है। ये भागवतम सुन के मुझे डिस्टर्बेंस क्यों हो रहा है, ये महान आचार्यों की बात सुन के मुझे डिस्टर्बेंस क्यों हो रहा है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। वो डिस्टर्बेंस क्यों हो रहा है, डिस्टर्बेंस क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे हृदय में काम वासना है। ये डिस्क्रिप्शन का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमारे हृदय में काम नहीं है तो हम इस सुनने से पढ़ने से हमारे उसमें कुछ विकार नहीं आएगा, डिस्टर्बेंस नहीं होगा, ये अमृत की तरह नेक्टर आएगा। लेकिन हमारे हृदय में अभी क्या है, काम वासना है, एंजॉयिंग मेंटेलिटी है, इसलिए ये सुनने से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। और फिर सोचा रही ये क्यों बोल रही, वो क्यों बोल रहे, ये नहीं बोलना चाहिए, वो नहीं बोलना चाहिए। तो जय श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव शब्द मैया की जय, श्री श्री गौरताय की जय। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये प्रश्न है कि ये आचार्य क्यों बोल रहे, भागवतम क्यों बोल रहे, ये नहीं है कि हमको डिस्टर्ब क्यों हो रहा है, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है हमारे लिए। और ये डिस्टर्बेंस क्यों हो रहा है, क्यों हमारे हृदय में काम वासना है। और जब भी हमको समझ में आता है कि हमारे हृदय में काम वासना है तो हमको कैसा महसूस होना चाहिए, हमको हाँ हमारे हृदय में हमको नम्रता आना चाहिए, दीनता आना चाहिए, वी शुड फील हम्बल। हमको समझना चाहिए हम अयोग्य है, हम इतने पतित है, थोड़ा सुनने से बोले हम डिस्टर्ब हो रहे, तो देखो कितना हमारा पतित का स्थिति है। सो वी अंडरस्टैंड आवर डिस्क्वालिफिकेशंस, हमारा अयोग्यता हमको इससे समझ में आता है। तो अयोग्य व्यक्ति योग्य व्यक्ति का बारे में यू नो उनका फॉल्ट नहीं देख सकता। ये जो महात्मा लोग है सुखदेव गोस्वामी, तो काम से परे है, ये सब ऋषिगण जो है बहुत महान है, उन्होंने काम को तो कब का त्याग कर दिया है। प्रभुपाद जी वगैरह, प्रभुपाद जी एक बार बोले कि मुझे अगर नग्न स्त्रियों के बीच में भी रखा तो मुझे विकार नहीं आएगा, क्योंकि मैं काम से मुक्त हूं। तो ऐसे मुक्त पुरुष ये भागवतम का अमृत का स्वाद कर सकते हैं। और ऐसे अब देखेंगे एक स्कंद के आगे जाते जाते और अमृत वर्षा बढ़ती जाएगी, और फाइनली दसम स्कंद में आएंगे तो सर्वोच्च अमृत का स्वाद करने को मिलेगा। और हम दसम स्कंद में आते तो कृष्ण और गोपियों का लीला सुनते हैं, वो तो परमोच्च आनंद और स्वाद और परमोच्च नेक्टर अमृत का ये है। लेकिन अनक्वालिफाइड लोग जब सुन लेते तो क्या होता है, और ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं। अभी फिफ्थ कैंटो में डिस्टर्ब हो रहे तो आगे क्या होगा, यू नो। अभी इधर हम सुखदेव गोस्वामी को गाली देंगे, बाद में जाके कृष्ण को भी गाली दे सकते हैं। अरे ये क्यों कर रहे कृष्ण, तो ये प्रॉब्लम किसका है, सुखदेव गोस्वामी का प्रॉब्लम नहीं है, ये परमहंस लोगों का प्रॉब्लम नहीं, ये अमलपुरम भागवतम का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है हमारा, वी आर डिस्क्वालिफाइड। तो ये डिस्क्वालिफिकेशन कैसे मुक्त हो सकते हैं, उसका भी सॉल्यूशन दिया है। इसका सॉल्यूशन क्या है, हमको अधिकृत व्यक्तियों से सुनना चाहिए। यही बात अगर हम भौतिकवादियों से सुनेंगे तो और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे, लेकिन यही बात भक्तों के द्वारा सुनेंगे तो क्या होगा, ये काम रूपी जो डिसीज है, बीमारी है, उससे हम मुक्त हो सकते हैं। सो हम इसलिए ये जो भागवतम, ऐसा नहीं कि किससे भी सुन सकते हैं, एक अधिकृत व्यक्ति से सुनना चाहिए, स्पेशली जो काम से मुक्त है, ऐसे व्यक्तियों से सुनने का अगर मौका मिला तो हमारा वो परमोच्च फॉर्चून भाग्य है। और ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए उनसे, और अगर सुनने के लिए क्वालिफाई होने के लिए क्या करना चाहिए, पहले उनका सेवा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, भक्तों का सेवा करना चाहिए और भक्तों का आदेश का पालन करना चाहिए। और स्पेशली आदेश जो है इस कलयुग में हम सबको महाप्रभु ने आदेश दिया है और श्रील प्रभुपाद ने भी उसको दोहरा है, आदेश है कि भगवान का पहले आश्रय लो किससे, हरे नाम से, नाम से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो नाम बाण है, ये जो दो बाणों से भी पावरफुल है, ये दो बाण है बहुत खतरनाक है, लेकिन उसको काउंटरैक्ट करने के लिए हमारे पास उससे भी पावरफुल बाण है, वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो ये इसका आश्रय लेना चाहिए, नाम का आश्रय लेना चाहिए, भक्तों का सेवा का आश्रय लेना चाहिए और हमेशा नम्रता से रहना चाहिए। कभी सोचना नहीं चाहिए कि अभी मैं मुक्त हो गया, ये माया बहुत खतरनाक है। हमेशा नम्रता से अगर भक्तों के संग में रहेंगे, भगवान का नाम कीर्तन करते रहेंगे, तृणादपि सुनी चेना तरोरिव सहिष्णा मानिना मान देना कीर्तनीय सधारे, तो धीरे 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 हम क्या हो सकते, क्वालिफाई हो सकते हैं। और अगर क्वालिफाई हो गए, क्वालिफिकेशन कब क्वालिफिकेशन हो गए हमको समझ में आएगा, जब ये फिफ्थ कैंटो में भी ये ऐसा चर्चा करेंगे, डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है, इसका मतलब थोड़ा क्वालिफिकेशन बढ़ रहा है। जैसे आगे आगे जाएंगे हमको भागवतम के किसी से भी कुछ इससे डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा, तो फिर इसका मतलब हम धीरे धीरे मोर क्वालिफाइड हो रहे हैं। और फिर दशम स्कंद में जाएंगे तो फिर हम असली में जो नेक्टर है उसका भी आस्वादन कर सकते हैं। सो इधर हम देखते हैं अग्निद्रह के बारे में। अग्निद्रह तो बहुत बड़े राजा थे, उनका तो साम्राज्य पृथ्वी से भी बड़ा था, पृथ्वी तो एक पार्ट था उनके साम्राज्य का। और फिर हम देखते हैं उन्होंने बहुत फर्स्ट क्लास राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन किया। और फिर उनके 9 पुत्र भी हुए और उन्होंने ये 9 आइलैंड्स उनको दे दिए और ये हो गए। सो लेकिन हम देखते भागवतम में उनके बारे, अगर कोई भौतिक इतिहास में उनके बारे में पढ़ेंगे तो सोचेंगे अरे इनके जैसे तो आदमी है ही नहीं, इतने महान। लेकिन भागवतम में हम पढ़ते महान भक्तों के द्वारा, सुखदेव गोस्वामी के द्वारा, हमको पता चलता है वो उनका इतना गुण कीर्तन नहीं करते, रादर उसमें थोड़ा जब पढ़ने के बाद उनके प्रति हमको थोड़ा दुख हो जाता है, अरे ये इतने महान प्रियव्रत जैसे शुद्ध भक्त के पुत्र होते हुए भी कैसे थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो उनके जीवन में 3 प्रॉब्लम था, सब कुछ परफेक्ट था, बहुत अच्छा, उन्होंने भौतिक दृष्टि से अगर देखा जाएगा तो उनका जीवन परफेक्ट है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाएगा तो उनके जीवन में हम देखते 3 प्रॉब्लम। पहला प्रॉब्लम क्या है, उनका जो इच्छा था क्या था, पितृलोक जाने का, उनका अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ को क्या बोलते, परम लक्ष्य जीवन का, परम उद्देश्य परम लक्ष्य क्या था, पितृलोक जाने का। तो उनका लक्ष्य भगवत धाम जाने का नहीं था, तो एक बड़ा वो प्रॉब्लम है, बिकॉज ही डिडंट एम एट द टॉप मोस्ट थिंग इन लाइफ, उनका गोल थोड़ा तुच्छ गोल था। मैन इज नोन बाय हिज एस्पिरेशन, कौन कितना महान है हम कैसे जान सकते कि उसका देह कितना ऊंचा है। तो हम देखते प्रियव्रत का देह क्या था, भगवत धाम जाने का, लेकिन अग्निदर का देह क्या था, पितृलोक जाने का। तो उनका देह सर्वोच्च नहीं था, तो वो उनका एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, ओके उनको पितृलोक जाना था, ठीक है, एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है उन्होंने किसका आराधना किया, सर्वोच्च परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का आराधना नहीं किया, उन्होंने किसका आराधना किया, ब्रह्मा का, जो एक देवता स्वरूप में आराधना किया, उन्होंने एक शुद्ध भक्त के रूप में उनका आराधना नहीं किया। अगर शुद्ध भक्त के रूप में करते तो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने देवता के रूप में ब्रह्मा का आराधना किया। सो ये दूसरा गलती है, परम पुरुषम भगवान गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी, ब्रह्मा बोलते ही मैं कृष्ण का आराधना करता हूं, और इन्होंने ब्रह्मा का आराधना किया भक्त के रूप में नहीं। भक्त के रूप में करते तो फिर परफेक्ट हो जाता, और ज्यादा परफेक्ट होता, लेकिन उन्होंने देवता के रूप में आराधना किया, और वो भी ये भौतिक इच्छा प्राप्त करने के लिए, कामस्तस्ते रत क्या ना, जब किसका हृदय काम से बहुत कवर होता है, तो वो क्या सोचता है, भगवान के पास जाना ठीक नहीं है, हम क्या करते, देवता के पास ही जाते हैं। जैसे कोई बच्चे को सिगरेट फूकना है, वो पिता के पास नहीं जाता पैसे मांगने के लिए या सिगरेट मांगने के लिए, उनको पता है पिता के पास जाएगा तो मिलेगा नहीं, तो क्या कुछ तो करता है, और फिर ये दुकानदार के पास जाता है और दुकानदार से बीड़ी मांगता है, सिगरेट मांगता है। वैसे कुछ बहुत ही इच्छा है तो कभी कभी जीवात्मा लोग डरता है भगवान के पास जाने के लिए, जो कि अपने माता पिता है, और वो देवताओं के पास जाता है, सोचता है कि एनीवे वो दे देंगे, कभी कभी गलत चीज माता पिता नहीं दे देंगे लेकिन बिजनेस वाले लोग दे देंगे। सही। सो अग्निद्र भगवान का आराधना नहीं किया, कृष्ण का आराधना नहीं किया, उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा का एक देवता के रूप में आराधना। और तीसरा प्रॉब्लम क्या था, वो तपस्या किए, लाइक हम देखते हैं कि उनके पिताजी प्रियव्रत भी तपस्या किए, हम देखते हैं शास्त्र में कुछ भी अच्छा पाना है तो तपस्या करना जरूरी है, तपस्या करने से ही अच्छा फल प्राप्त होगा, बिना तपस्या नो पेन नो गेन। तो इन्होंने भी तपस्या किया, लेकिन उन्होंने क्या किया, किधर गए तपस्या करने के लिए, मंदार पर्वत गए जिधर बहुत देवता लोग अप्सरा लोग आता है। तो उनका एक ये तीसरा गलती हो गया, ऐसे जगह जाना चाहिए तपस्या करने जिधर साधु संतों का हमको वास हो, संग मिले, तो उन्होंने ऐसे स्थित जगह नहीं गए जिधर साधु संतों का उनको संग मिले, उनसे कुछ सुनने का मिले। सपोज हमारा कुछ गलत भी अंडरस्टैंडिंग हो, गलत भी कुछ हो, नो प्रॉब्लम, अगर एटलीस्ट सही जगह गए तो उधर साधु संतों का संग हो सकता है, और फिर गलती से वो सुधार हो सकता है। अगर किसी को जीवन में क्या पता है पता नहीं, फिर भी नो प्रॉब्लम, अगर वो इस्कॉन मंदिर में आएगा, भक्तों का संग करेगा, तो उसको सब ठीक ठाक समझ में आएगा, है ना, पहला दो जो मिस्टेक है वो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन इधर तीसरा मिस्टेक उन्होंने किया, तपस्या करने के लिए वो किधर गए, एकदम मंदार पर्वत जिधर अफसर लोग आता है, और उनको पता था उधर आता है और इसलिए उधर गए। कभी कभी लोग हम देखते, कुछ कुछ लोग ना सारस बाग इधर पुणे में गणपति उधर जाते हैं, इस्कॉन मंदिर में नहीं आते क्योंकि उधर बहुत कुछ बाकी चीज भी होता है ना, तो उधर साधु संत मिलना कभी कभी थोड़ा मुश्किल है, इस्कॉन मंदिर में आएंगे जरूर साधु संत मिलेगा और हमको सही दिशा में लेके जाएंगे। तो हम देखते हैं कि ये जो अग्निग्रह, उनको परम ध्येय क्लियर नहीं था, और उनका मन जो है परम ध्येय पे फिक्स नहीं था। तो जिसका मन जो है परम ध्येय का फिक्स नहीं होता तो मन चंचल होता है, और ऐसा व्यक्ति हमेशा डिस्टर्ब होता है, संतुष्टि नहीं प्राप्त होता। हम देखते हैं अग्निद्र का स्टोरी आगे देखेंगे, कैसे उनको पुरुचिति मिली, कैसे उनका शादी हुआ, कैसे उनको बहुत अच्छे नौ पुत्र मिले, और उसके बाद पुरुचिति ब्रह्मा के पास चली गई, बाद में वो इतना डिस्टर्ब हो गए, संतुष्ट नहीं हुए वो। तो भौतिक प्राप्ति से कोई कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। तो ये परम ध्येय क्या है, अगर किसी को पता नहीं, और वो एस्पेशली और माइंड एंड इंटेलिजेंस, हमारा जो बुद्धि और मन को ये कन्विंस होना चाहिए क्या परम देह है, तो माइंड विल बी पीसफुल। अगर परम देह को हमारा मन अगर परम देह के ऊपर फिक्स नहीं करेंगे तो माइंड हमेशा चंचल होते रहेगा। हम देखते इसलिए लोग आज माइंड को जितना ऑप्शन देंगे, अगर माइंड को फिक्स नहीं करेंगे परम देह के ऊपर, माइंड को जितना ऑप्शन देंगे माइंड उतना डिस्टर्ब कर देगा। आजकल लोग बोलते फ्रीडम होना चाहिए, लेकिन फ्रीडम के नाम में क्या हो रहा है, माइंड और ज्यादा चंचल हो रहा है और ज्यादा दुख का कारण बन रहा है। एक रिसर्च किया था, अमीर भक्तों की, अमीर लोगों के बच्चों के ऊपर और गरीब लोगों के बच्चों के ऊपर, और ऐसा देखा गया कि अमीर लोगों के बच्चे ज्यादा दुखी है गरीब लोगों के बच्चे से, क्यों? अमीर लोगों के बच्चों को ज्यादा वैरायटी ऑफ टॉयज है, ज्यादा वैरायटी, अलग अलग वैरायटी के खिलौने है, तो उससे वो बहुत ये खिलौना खेलता है वो बोर हो जाए, दूसरा खिलौना करता है बोर होता है, तीसरा खिलौना करता है बोर होता है, और फिर उससे क्या होता है और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन कभी कभी गरीब बच्चे रहते हैं, उनके पास ज्यादा कुछ नहीं रहता, एक मैंगो सीड रहता है उससे ही खेलते रहते और ज्यादा संतुष्ट रहते। सो माइंड को जितना ऑप्शन देंगे उतना माइंड हमको दुखी बनाएगा। और माइंड का और एक ये है कैरेक्टरिस्टिक है कि माइंड ओवर एस्टिमेट हैप्पीनेस एंड अंडर एस्टिमेट द सफरिंग। माइंड लगता है ये करो उससे बहुत खुश होगा, उसको बोले यार ये दुख होगा, नहीं बोलता है छोटा ही होगा, यू नो नो प्रॉब्लम। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, दुख बहुत ज्यादा आता है, सुख बहुत कम होता है। तो हम देखते हैं ये जो मन जो है बहुत खतरनाक है, हमको अलग अलग इस चीजों में फंसाता है। जैसे एक पुराने जमाने में कभी कभी जो गुनहगार थे, क्रिमिनल्स थे, उनको पनिशमेंट दिया जाता था। क्या क्या पनिशमेंट दिया जाता था कि एक बहुत बड़ा पत्थर है उसको ढकेलते ढकेलते एक पर्वत के ऊपर लेके जाना, और वो बहुत मेहनत लगता था। कभी कभी यू नो बहुत मेहनत से एक महीना वगैरह सब कसरत करके कैसे 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 वो पर्वत के ऊपर लेके जाएगा। तो ऊपर जाने के बाद क्या करते थे वो सिपाही लोग, वो पत्थर को और नीचे खींचते थे और बोलते थे अभी और एक बार लेके आओ। यानी मानो एक महीने के बाद आप इतना परिश्रम करके पत्थर को ऊपर ले गए, और उतर जाने के बाद क्या करते थे वो पत्थर को नीचे ढकल देते थे, फिर से वो पत्थर क्या होता था नीचे जाता था, और फिर से उसको बोलते थे अभी क्या करो, अभी फिर से ढकलो, अभी फिर से ढकेल दिया। फिर और एक दो महीने के बाद परिश्रम करके वो ऊपर लेके जाता था, फिर उसके बाद क्या करते थे वो उसको ढकेल देते थे नीचे, और नीचे आने के बाद फिर से क्या अभी क्या करो और पत्थर ऊपर ढकेलो। मानो अगर ऐसा पनिशमेंट अगर हम किसी को मिला कैसा लगेगा, हाँ ये कैसा पनिशमेंट है, बहुत खतरनाक पनिशमेंट है ना। और यही पनिशमेंट इस भौतिक जगत में हमारा मन हम सबको दे रहा है। कैसे देखो, हम देखते जो बच्चे होते बचपन में लगता है कि बहुत पढ़ाई करना चाहिए, बहुत मार्क्स लाना चाहिए, दोगे टेंथ में हमको टॉपर होना चाहिए, तो लोग बहुत मेहनत करते, दिन रात पढ़ाई करते और टेंथ में टॉपर आ जाते हैं। जैसे टेंथ में टॉपर आ जाते हैं, एक दिन उनको माला पहनाते हैं, एक दिन तालियां बजता है, बाद में तुरंत पेरेंट्स लोग क्या बोलते हैं, अरे दसवीं तो हो गया अभी बारहवीं है। तो जैसे इतना उसने मेहनत कर दिया, वो पत्थर ऊपर लेके गए, जैसे ऊपर हो गए एक ताली बजता है तो बोलते हैं अभी फिर से ग्राउंड तक आ जाता है। वो पेरेंट्स लोग टीचर लोग बोलते हैं ठीक है दसवीं तो ज्यादा बड़ी बात नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है अभी ट्वेल्थ है, अभी ट्वेल्थ में अच्छा मार्क लाना चाहिए। तो फिर से वो बेचारा बच्चा क्या करता है, वो नीचे से पत्थर है उसको अभी और खींचने को लगता है, और धीरे 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 जैसे ट्वेल्थ कहा जाता है, ट्वेल्थ में बहुत अच्छा मार्क मिल जाता है उसको, वो भी उधर टॉपर बन जाता है आईआईटी में या किधर जाता है, और ट्वेल्थ के बाद क्या हो जाता है उसको अच्छा मार्क मिला है, एक दिन कुछ दिन के लिए ताली हो जाते, उसके बाद फिर से पत्थर नीचे। अभी बोलते अरे आईआईटी में जाना यही जीवन का उद्देश्य नहीं, अच्छा जॉब लगना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट इंटेल ओरेकल गूगल कुछ तो करोड़ रुपए का जॉब ऐसा पैकेज मिलना चाहिए। अरे मानता है मैं इतना मेहनत किया और फिर उसका कुछ है ही नहीं। अभी आईआईटी में अभी मैं एक बार गया था जब 2001-2003 में समथिंग आईआईटी में फर्स्ट ईयर का प्रोग्राम राजेशम पो आए थे, गेटवे टू द ग्रेट वे ये प्रोग्राम था, तो मैं बच्चों को इनवाइट करने के लिए जा रहा था हॉस्टल में रूम टू रूम। तो एक हफ्ता ही हुआ था सब बच्चे लोग आए थे आईआईटी में, तो जब एक साथ सबको मिला के मैं अनाउंसमेंट कर रहा था, तो मैंने क्यूरियोसिटी में जब सब पूछा कि आप लोग अभी आईआईटी में आए जस्ट एक हफ्ता हुआ है ना, कितने लोगों को यू आर फीलिंग दैट यू नो यू यूजलेसली वर्क सो हार्ड एंड यू आर फीलिंग नाउ फ्रस्ट्रेटेड अभी आईआईटी में आने के बाद। तो 90% ऑफ लोग ने हाथ ऊपर किया कि हम आईआईटी में आए फ्रस्ट्रेटेड हो गए अभी अभी पहले हफ्ते में ही ना, क्योंकि वो जो सुख है वो इतना ढकलने का, वो ढकल देते एक क्षण में उसको नीचे फेंक देते और अभी बोलते अभी हो गया आईटीआई में तो क्या हुआ, अभी तो बड़ा जॉब लगना चाहिए। और फिर जॉब लगने के लिए बहुत मेहनत करते, जॉब का पत्थर ऊपर लेके जाते, फिर उसके बाद वो फिर से पत्थर नीचे बोलता अरे तुम तो ट्रेनी इंजीनियर हो, तुमको तो सीईओ बनना चाहिए या अपना खुद का कंपनी करना चाहिए, फिर से नया पत्थर है ना। फिर वो हो गया बोल रहे शादी होना चाहिए, बच्चे होना, जो भी गोल करते वो क्या करते हैं, ये गोल एक क्या है, एक एक गोल क्या है, एक पत्थर के समान है, वो ऊपर तक लेके जाते, ऊपर जाने के बाद क्या होता है, माया ढकेल देते उसको और पूरा जिंदगी वो पत्थर ऊपर लेने में नीचे ढकलने में, यही जिंदगी है। तो माइंड को जब तक सही गोल नहीं देंगे माइंड डिस्टर्ब रहेगा। अब ये पूरा ऐसा डिस्टर्बेंस में लोग पूरा जिंदगी, बाद में कुछ कुछ लोग जो दिमाग वाले लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बोलते हैं मूर्खता है वो, एंड दे वांट टू क्विट दिस काइंड ऑफ लाइफ, वो इसलिए वो आत्महत्या कर लेते बिकॉज अरे ऐसा जिंदगी कौन जिएगा, यू नो जितना जिएंगे उतना दुख ही आएगा, बेटर है छोड़ दो भाई। तो प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम क्या है, ये माइंड को टेम्पररी गोल दिया है और टेम्पररी गोल हमको संतुष्ट, तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, परम ध्येय क्या है जीवन का ये पहले एस्टेब्लिश करना चाहिए और वो गोल हमको मन को देना चाहिए। हम देखते हैं, एक बार मैं जा रहा था, बहुत जल्दी में था, मंदिर से बाहर निकला, गाड़ी को टैक्सी येलो टैक्सी उसको पकड़ा, बैठ गया, मैं बोला ड्राइवर को चलो जल्दी, वो बोला प्रभु जी किधर जाना है बताओ, मैं बोला बता दो तो पहले आप चालू करो गाड़ी, बहुत जल्दी जाना है, वो बोला नहीं मुझे पहले बताओ किधर जाना है, मैं बोला नहीं मैं बताऊंगा लेकिन पहले शुरू करो, वो बोला मैं नहीं जाऊंगा पहले बताओ आपको किधर जाना है। तो मैं सोचा रहा देखो ये टैक्सी वाला भी थोड़ा बुद्धिमान है, क्या करता है वो पहले पूछता है किधर जाना है, उसके बाद डिसाइड करता है जाना है नहीं जाना है। तो जीवन में भी ये होना चाहिए, अगर गाड़ी जीवन का गाड़ी शुरू करने से पहले होना जाना चाहिए किधर जाना है हमको भाई, जीवन का उद्देश्य क्या है। अभी ओला उबर ये सब कुछ है उसमें गाड़ी बुक करना है, वो पहले पूछता है डेस्टिनेशन बताओ है ना, फिर वो पूछता है आपका लोकेशन बताओ, या एटलीस्ट दैट लोकेशन जो है वो उसको स्टार्ट कर दो, वो ऑटोमेटिकली फिर लोकेशन फाइंड करेगा, यू नो। तो लोकेशन फिक्स हो गया, फिर यू नो डेस्टिनेशन फिक्स हुआ, उसके बाद जर्नी स्टार्ट होता है। डेस्टिनेशन जब तक पता नहीं तब तक जर्नी स्टार्ट नहीं होता, और ये उबर ओला में तो दोनों फिक्स होना चाहिए, डेस्टिनेशन भी फिक्स होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, और पिकअप पॉइंट भी फिक्स है ना, अब किधर से निकलना है किधर जाना है, वो दोनों जब शुरू क्लियर है तो वो जर्नी शुरू हो जाता है। तो इसलिए जीवन शुरू करने से पहले हमको जीवन का उद्देश्य क्या है, किधर क्या डेस्टिनेशन है जीवन का, ये जानना बहुत जरूरी है। और हम देखते हैं भागवतम में शुरू में ही वो क्लियर किया है, भागवतम में शुरू में देखते हैं ये 80,000 लोग जो साधु संत लोग है वो बैठे शुद्ध गोस्वामी को पूछते हैं आपने तो बहुत पढ़ाई किया बहुत ये किया, आपने इतने महान व्यासदेव ऐसे बड़े बड़े आचरण सीखा, आपको तो समझ में आया, हमको तो ज्यादा बुद्धि नहीं हमको तो ज्यादा टाइम नहीं, आप बता दो जीवन का उद्देश्य क्या है, और स्पेशली जो मरने वाला व्यक्ति उसका कर्तव्य क्या है। और फिर हम देखते हैं शुद्ध गोस्वामी बोल दिए सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अदोक्षजे ययात्मा अहितु की अप्रत्ययता ययात्मा सुप्रसिद्धति। उन्होंने बोला कि जीवन का उद्देश्य क्या है, जो प्राप्त करने से हमको संतुष्टि मिलेगा आनंद मिलेगा, सबको संतुष्टि मिलेगा सबको आनंद मिलेगा। तो शुद्ध गोस्वामी ने बताया कि जीवन का उद्देश्य एक ही है, वो है भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति, भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त करना। और ये प्रेम, ये भक्ति कैसा होना चाहिए? अहित की अप्रतिहता। अगर अहित की अप्रतिहता से हमने सेवा करेंगे भगवान का, भक्ति करेंगे, तो क्या होगा? ययात्मा सुप्रसिद्धति, हमको गारंटेड संतुष्टि मिलेगा। सब लोग संतुष्टि चाहता है, आनंद चाहता है, लेकिन कैसे मिलेगा उनको पता नहीं। तो भागवत में शुरू में ही बताए कैसे मिलेगा, अहितु की भक्ति से मिलेगा। और हम देखते परीक्षित महाराज को भी सुखदेव गोस्वामी ने क्लियर कर दे पहले। सो हमारे जीवन का गोल क्लियर होना चाहिए पहले। एंड सो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूरे श्री वैदिक ग्रंथों को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया। क्या? संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। लाखों लाखों श्लोक है वेदों में, तो चैतन्य महाप्रभु बोला कि ये जो सब चीज है ये तीन ही चीजों का बात कर रहे हैं। तो आप ये तीन चीज जान लो, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। पहले जान लो प्रयोजन क्या है जीवन का। जीवन का प्रयोजन पैसा कमाना नहीं है, जीवन का प्रयोजन इंद्र तृप्ति नहीं है, जीवन का प्रयोजन कुछ टेम्पररी नाम यश कमाना नहीं है, जीवन का प्रयोजन कुछ मूर्खों के बीच में कुछ तालियां कमाना नहीं है। जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान का प्रेम प्राप्त करना, ये जीवन का उद्देश्य। सो क्योंकि हम शरीर नहीं है, ये शारीरिक चीज और भौतिक चीज हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता, क्योंकि हम भौतिक नहीं है, क्योंकि हम आत्मा है। संबंध ज्ञान जान लो हम कौन है, हम शरीर नहीं आत्मा है, और हम भगवान के अंश है। ममय लोके जीव लोक ममय मय अंश जीव लोके जीव भूत सनातन, हम भगवान के अंश है सनातन, और जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, और हमारा जो स्वभाव है नित्य भगवान का सेवा करने का। तो ये संबंध ज्ञान जानना बहुत जरूरी है, कि मैं भौतिक नहीं हूं तो मेरा भौतिक गोल होने से मुझे संतुष्ट नहीं मिलेगा। मैं आध्यात्मिक हूं, मैं आत्मा हूं, और मैं भगवान परमात्मा कृष्ण का अंश हूं, और उनका सेवा करना ही मेरा संबंध है उनसे। ऐसा नहीं कि ना, संबंध ज्ञान क्लियर होना चाहिए, प्रयोजन क्लियर होना चाहिए, उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं अभिधेय क्या है। अगर डेस्टिनेशन क्लियर है, स्टार्टिंग पॉइंट क्लियर है, तो हम डिसाइड कर सकते हैं आप कौन सा पाथ लेना है। अभी कभी कभी हम आपको फास्ट जाना है, क्या आपको कंफर्टेबली जाना है, या आपको जाते जाते रास्ते में और कुछ पिकअप करके जाना है ना, और आपको कौन से गाड़ी में जाना है, तो उस हिसाब से थोड़ा पैसा टाइम अलग अलग लग सकता है। उसके बाद अगर डेस्टिनेशन क्लियर है, आप किधर है और आपको कैसे जाना है, आपको बहुत फास्ट में जाना है, एकदम सेफली जाना है, और बीच बीच में टाइम पास नहीं करना है, तो एक एक पाथ ले सकते हैं, और अलग अलग आपके इच्छा से अनुसार अलग अलग पाथ है। तो आप अगर बेस्ट पाथ चाहिए, एकदम परफेक्ट पाथ चाहिए, कंफर्टेबल पाथ चाहिए, गारंटेड पाथ चाहिए, फ्री फ्रॉम एक्सीडेंट पाथ चाहिए, तो शास्त्र बोलता है वो पाथ क्या है, स्पेशली कलयुग में पाथ है भगवान नाम का आश्रय लेना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम देखते इसके बारे में भी चर्चा श्री चेतन महाप्रभु और रामन राय में हुआ, वो बात कर रहे थे चर्चा, परम देह क्या है और वो देह को प्राप्त करने का साधन क्या है। सो देह कृष्ण भक्ति और साधन है भक्ति। सो और कलयुग में यह हरिनाम संकीर्तन जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सो हम देखते हैं कि लोग सुख प्राप्त करने के लिए भौतिक चीजों के पीछे भाग रहे, लेकिन भौतिक चीजों से पीछे भागने से यही संसार जब होगा दुख है नहीं होते, अध्यंत अंत कौनते न तेषु रमते पूजा। तो अगर हमको आनंद का प्राप्ति करना चाहिए तो समझना चाहिए कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और आत्मा किधर है? अंदर है, हृदय में ही है। और हमको भगवत प्राप्ति करना है, भगवान किधर है? वो भी अंदर है। और अगर हम भगवान से कनेक्ट कर पाए अंदर ही अंदर, तो क्या होता है, हम आत्माराम बन सकते हैं। भगवद गीता में बताए आत्माराम, आत्माराम लोग क्या होते हैं, उन वो दे हैव सेल्फ रियलाइज, आत्म साक्षात्कार लोग हैं और उन्होंने क्या किया है, भगवान से संबंध जोड़ लिया। ऐसे जो लोग जिन्होंने भगवान संबंध जोड़ लिया वो क्या है, आत्माराम संबंध, वो क्या है, एकदम अंदर ही अंदर में खुश है, उनको भौतिक बाहर चीजों के बारे में कुछ चीजों की जरूरत नहीं है। सो हम देखते प्रहलाद महाराज भी, उन्होंने ऑलरेडी अपना गोल प्राप्त कर लिया था, उनको भगवान भगवत प्राप्ति हो गई थी, उनको आत्म साक्षात था, तो इसलिए वो बोलते मैं बहुत खुश हूं। आज के श्लोक में भी बोल रहे हैं, प्रभुपद तात्पर्य में बता रहे प्रहलाद महाराज के, सोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय भरम अद्भुत विमूढ़ान। बोलते प्रहलाद महाराज, मैं तो बहुत खुश हूं क्योंकि मुझे तो भगवत प्राप्ति हो गया, लेकिन मैं ये मूर्ख लोगों के लिए बहुत परेशान हूं कि ये लोग विमूढ़ है, मूर्ख है और बाहरी दृष्टि में बाहरी चीजों में वो आनंद का भोग करने का प्रयास कर रहे हैं। अरे भौतिक चीजों में बाहरी चीजों में आनंद नहीं है, आनंद है भगवान के सेवा में और भगवान तो हृदय में ही है। तो थोड़ा शांत बैठ के थोड़ा भगवान का नाम ले लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और आनंद का अनुभव करो। आजकल तो अभी कोरोना का टाइम है, बाहर नहीं जा सकते, उसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या? अच्छा बात नहीं, बाहर नहीं जा सकते क्योंकि अभी अभी समय हम अंदर जा सकते हैं, क्योंकि बहुत बाहर भागे और बहुत बाहर भागने से आनंद का प्राप्ति नहीं होने वाला है। हम देखते सब बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, आनंद का प्राप्ति करना है तो क्या करते हैं, वो अंदर जर्नी विद इन, अंदर वो चले जाने का प्रयास करते हैं, भागने से नो किधर भागेंगे। रविन्द्रनाथ टागोर लिखते एक कथा, ये वेस्टर्न जब वो लंदन गए थे, वो देख ले ये लंदन तो इतना छोटा सा शहर है और समुद्र है सब जगह, ये लोग कितना भाग रहे हैं, गिर जाएंगे समुद्र में। अरे इतना मत भागो, थोड़ा शांति रहो और अभी थोड़ा अंदर जाने का प्रयास करो। अभी बाहर नहीं जा सकते तो क्या करो, अंदर जाओ और समझ लो असल में जीवन का उद्देश्य क्या है, हम कौन है, भगवान किधर है, भगवान से कैसे नाता जोड़ सकते हम, और वो नाता जोड़ने का प्रयास कीजिए। तो और जैसे ही हम वो नाता जोड़ पाएंगे योग, वैसे हम एकदम आत्माराम बनेंगे, दूसरे लोगों को और बाह्य सिचुएशन को ब्लेम करना छोड़ देंगे और आनंद जैसे होंगे तो फिर वो आनंद का हम बांटना शुरू कर देंगे। हम देखते प्रहलाद महाराज, he was happy and he was wanting to make others happy. Similarly, Prabhupada, बूढ़े थे लेकिन वो भगवत साक्षात्कार हुआ था, आनंद से ओतप्रोत थे, तो वृंदावन में थे लेकिन वो शांति से बैठे नहीं, तो उन्होंने क्या किया, अमेरिका जाने का प्रयास किया, क्योंकि वो तो ऑलरेडी जिसको हृदय में भगवान मिले तो उनको सब जगह भगवान है। तो प्रभुपद वृंदावन छोड़ के क्या किए, वृंदावन को लेके गए हृदय में, सब जगह वृंदावन का स्थापना किया। वैसे हम देखते रिसेंटली भक्ति चौर महाराज, लोग बोलते रहे उज्जैन में शाना अच्छा थे, क्यों गए अमेरिका, अभी क्यों गए, बिकॉज वो तो सेल्फ रियलाइज पर्सनैलिटी, दे आर हैप्पी एंड दे कांट सी अदर सफरिंग, दे वॉन्ट टू मेक अदर्स हैप्पी, दे वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट। तो अगर आपको आत्म साक्षात को हुआ है, आत्मा राम हो तो आप बाहर जा सकते हैं ना। अगर स्टिल अज्ञान में है, भौतिक चेतना है, तो बेटर अंदर ही रहना। वी शुड नॉट इमिटेट सच ग्रेट सोल्स, बिकॉज ये ग्रेट सोल्स जो है वो कृष्ण को बांटने जा रहे हैं। कुछ भक्त लोग पूछ रहे थे, अरे महाराज शरीर छोड़ दिया, कैसे अमेरिका में छोड़ दिया, कोई बहुत भक्त लोग नहीं थे आसपास उनके ना? तो प्रभुपद के अलग अलग शिष्य लोग चर्चा कर रहे थे, जब वो हॉस्पिटलाइज थे तब राधानंद महाराज वैशेषिक और भी बहुत थे, तो उसमें चर्चा हो रहा था कि महाराज बोल रहे थे राधानंद कि एक्चुअली ये महान भक्तों के लिए अमेरिका और इंडिया और वृंदावन मायापुर कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो उधर जिधर वो है वो वृंदावन है, और ये बाह्य चीज जो है कि लोग आजू बाजू में होना चाहिए, कीर्तन होना चाहिए, तुलसी देना चाहिए जल, ये तो नवसख्या लोगों के लिए है, और हम करते हैं जैसे व्यास पूजा है, व्यास पूजा गुरु के लिए नहीं, ये शिष्यों के लिए, ये शिष्यों का बेनिफिट के लिए। वैसे ये जो बाह्य जो चीज रहती है अंतिम समय के समय जो करते हैं, ये तो डिसाइपल्स फॉलोअर्स वेलवी उनके लिए, उनके हृदय को संतुष्टि के लिए, और बाय विच दे कैन कनेक्ट टू ग्रेट पर्सनैलिटीज, ये उनके लिए जरूरत नहीं। या ऐसे लोग तो हमेशा भगवान के साथ रहते, और व्हेन दे आर लिविंग दे आर विद गॉड, एंड व्हेन दे लिव दे रिमेन विद लॉर्ड, सो उनका जीवन परफेक्ट है। सो जिनका जीवन परफेक्ट हो गया, वो आराम से फ्री फ्रॉम शोक मोह भय वो विचरण कर सकते हैं दुनिया में, और भगवत प्रसार कर सकते हैं। सो आज हम इधर देख रहे कि पूर्वचिति आई है और अग्निद्रव उनको देख के बहुत भ्रमित हो गए। अभी ये भ्रमित हो गए क्योंकि उनको पता नहीं परम उद्देश्य क्या है। तो अगर हमको भी परम उद्देश्य पता चलेगा और हमको परम साधन पता चलेगा, ये जो दो बाणों को काउंटरैक्ट करने का जो बाण आपको हमको पता चलेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हम इससे विचलित नहीं होंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत अच्छा समय है, बाहर जाने का नहीं, ये समय है अंदर जाने का, और ज़्यादा भगवान का नाम लेने का, ज़्यादा भगवान का ग्रंथों का, प्रभुपाद के ग्रंथों का आश्रय लेने का, ज़्यादा भगवान का सेवा करने का, और अंदर बैठे बैठे ही ऑनलाइन बाहर जा सकते प्रचार करने के लिए। ओके, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौ प्रेमानंदे, हरे हरे।